जा रहे हैं, एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, वो माशाल्लाह से पहले पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद वो हज पे जा रहे हैं, तो उन्होंने भी ली है।
अच्छा
जी हाँ। तो कैनेडियन यहाँ से बाहर जाएं या कोई कनाडा आ रहा है, और उस सब के लिए जो है ये इट्स इक्वली गुड।
जी बिल्कुल, फजल वदूद से राब्ता कीजिएगा 6472864285, 6472864285 पर आप राब्ता कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स जो आप कवर करना चाहेंगे?
बस ये जी कि हमेशा से ये कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि उनको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है या फिनेंशियली वो समझते हैं कि टाइट हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे लें, यू नो गिव मी अ कॉल। चूंकि साल हर साल अंडर राइटिंग की है तो अंदाज़ा है कहाँ से क्या एक बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। अक्सर ये फिक्र होता है कि यार मुझे ये कंडीशन हो गई, अब मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। आइडियल सिचुएशन ये है कि उस वक्त लें जब हम फिट हैं, लेकिन अगर टाइम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जिसमें कोई कंडीशन पेश आ चुकी है, स्टिल इट डज नॉट मीन कि पॉलिसी ना मिले, और ये भी नहीं कोई ज़रूरी कि बहुत ही एक्सपेंसिव मिले। लेकिन ये है कि उसके लिए अगर आप उसे कांटेक्ट करेंगे, नो ऑब्लिगेशन नो कमिटमेंट, आप मशवरे का कोई ऐसा वो उस पर ऐसा नहीं है कि आप लाजमी मुझसे लें। इसके अलावा किसी ने पॉलिसी रिव्यू करवानी है, या एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसी तो ली थी, किसी वजह से या तो अब एडवाइज़र जिन्होंने दी वो नहीं मिल रहे, या कोई ऐसी कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रॉब्लम है कि क्लेम समझ नहीं आ रहा कैसे करना है।
अच्छा, तब भी
आप मुझसे कांटेक्ट करें, उसकी कोई फीस नहीं है। सिंस आई हैड अ क्लेम डिपार्टमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग एज वेल, तो मैं आपको क्लेम में भी हेल्प कर सकता हूँ, एंड दैट विल बी जस्ट यू नो सर्विस टू द कम्युनिटी। क्योंकि सिर्फ पर्पज पॉलिसी लेके देना नहीं है, बाद में उस फैमिली को चेक पहुंचाना जो है ना, वो तो खास तौर पे कार्य सवाब है मैं समझता हूँ, और यही हर प्रोफेशन में यू नो अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन एलिमेंट है, एक सर्विस एलिमेंट है।
जी वही फिर
हमारे इंश्योरेंस में यही है कि एक अफेक्टेड फैमिली जाने वाला चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते।
जी क्योंकि देखिए ना, आपका तो काम ही है कि प्रोटेक्ट करना।
एब्सोल्युटली।
तो वो जो प्रोटेक्शन है उसमें ये सब कुछ आ जाता है। और अपना नंबर एक दफा प्लीज जरूर बता दीजिए।
श्योर, 6472864285 जी।
और मिलने का तरीका ये कि बस आपको कॉल करके किसी टाइम भी बैठ सकते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप मेरे ऑफिस आना चाहें, डेरी पे एयरपोर्ट के पास ऑफिस है, मुझे बुलवाना चाहें, वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट। इनिशियली टेलीफोन पे थोड़ी बहुत बात जरूर की जा सकती है, बैठ के मिलने में डेफिनेटली ज्यादा बेहतरी है।
बिल्कुल, कोई भी सवाल हो, सवाल छोटा बड़ा को मानी नहीं रखता, आप जाहिर है जहन में कोई ऐसी चीज है तो जरूर कॉल कर लीजिएगा। फजल वदूद साहब 6472864285 पर रब्ता कीजिएगा। तो चलिए इन्हीं के ताउन से आपको एक और गीत की तरफ भी लेके चलते हैं, उसके बाद राइट टू वे चलेंगे इंडिया, और इंडिया से जो भी लेटेस्ट खबरें वो आपकी तरफ लेकर आएंगे। अली अब्बास और सारा रजा खान की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ लेके चलते हैं आपको, ए बहारों गवा रहना।
ए बहारों गवा रहना, ए नजारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है।
याद रखना तुमने मुझको अपने
हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे।
हे तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत पे इत्तेबार नहीं, मुस्कुराने का इत्तेबार नहीं।
मुस्कुराओ आंसुओं में अपना बहने की कसम खाई है।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद अली। जहाँ आपने मुझे पूछा, आपने कहा कि दिस इज़ क्वाइट अनफेयर कि कौंडा भी, ये देखिए ये बात आपने कही और ये मैं आज ही ऑक्यूपेंसी एक हुई है, ये बिल्कुल यंग स्ट्रीट के ऊपर अपार्टमेंट्स बने हैं, मॉड डेवलपर्स हैं, मॉड डेवलपर्स मैसी टावर की बिल्डिंग है और उन्होंने आपने पूछा कि इज़ इट लीगल फॉर द बिल्डर टू आस्क फॉर द इंश्योरेंस अमाउंट मोर देन द एक्चुअल वर्थ ऑफ कॉन्डो यूनिट। ये आज ही ऑक्यूपेंसी हुई है और ईटन सेंटर यंग स्ट्रीट पे, ईटन सेंटर के बिल्कुल ईस्ट साइड पे ये कॉन्डो बना है और जाहिर है जब बुक किए थे तो डाउनटाउन में प्राइसेस उस ज़माने में 700-800 डॉलर पर स्क्वायर फुट थी, आज डाउनटाउन में हाथ ही नहीं लगता 1300-1400-1500-1600 डॉलर पर स्क्वायर फुट है। तो यहाँ पे आज ही उसकी क्लोजिंग अब ऑक्यूपेंसी हुई है और जो बिल्डर का लॉयर है उसने 2 मिलियन की इंश्योरेंस के बारे में कहा है कि 2 मिलियन की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक और बिल्डिंग के बारे में मुझे हुआ, उस बिल्डिंग में घरों की कीमतों का थोड़ा मसला चल रहा था। आपको पता है जब घर खरीदते हैं किसी अपार्टमेंट में कॉन्डो बिल्डिंग में तो स्टेटस सर्टिफिकेशन हमेशा मांगा जाता है। स्टेटस सर्टिफिकेट आपको बताता है इस बिल्डिंग में कितने फंड्स हैं, कोई लींस तो नहीं है, कोई सू तो नहीं हुआ हुआ। आप बताइए कि आजकल के दौर में वहाँ पे उस बिल्डिंग को जनाब, जब भी आप कहीं अपार्टमेंट कॉन्डोमिनियम लेते हैं तो आप स्टेटस सर्टिफिकेट ऑलवेज रिक्वेस्ट किया करते हैं। तो जो वॉशिंग रूम्स थे वहाँ पे उनको सू किया गया है, एलिवेटर को के लिहाज से बिल्डिंग को सू किया हुआ है कि कोई शायद गिर गया होगा या कोई वजह हो गई होगी जिसकी वजह से। तो अब ये जो डेवलपर्स हैं, ये जो मॉड डेवलपर हैं, उन्होंने 1 बेडरूम एंड अ डेन का जो अपार्टमेंट है इट इज़ अराउंड 600-700 स्क्वायर फुट। अब तो खैर आजकल के दौर में तो और भी अपार्टमेंट छोटे हो गए, 600-700 स्क्वायर फुट का ये अपार्टमेंट है, छोटा सा डेन है, किचन है, छोटा सा बेडरूम है और उसकी उन्होंने जो इंश्योरेंस मांगी है कि यू हैव टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस दैट इज़ $2 मिलियन। बहुत शुक्रिया अलीजा। बट क्या लीगल है क्या लीगल नहीं है ये तो वल्ला आलम बिस्सवाब, दैट्स व्हाट इट इज। आपकी एक और मुलाकात की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, आज एक और ख़ास मेहमान भी आए हुए, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक और गीत की तरफ लेके जाने से पहले मैं 2 स्पॉन्सर्स का पैगाम देती हूँ। साहब घर को पेंट अगर आपने करवाना है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं खुद पेंट कर लेता हूँ, मुजफ्फर हुआ करते थे खुद भी घर को पेंट कर लिया करते थे, मगर साहब खुद पेंट करना और एक शख्स जो बार बार पेंट करता है यानी बहुत सारे फ्लॉज रह जाते हैं। बारह मैंने नौकरी भी करनी है, मैंने घर को भी देखना है, मैंने 100 और चीज़ों को लुक आफ्टर करना है और एक जो आदमी पेंटर है जब वो रिपीटेडली अपना काम करता है तो उसके पास एक तमाम इक्विपमेंट मौजूद होता है। سلیم صدیقی ان کا نام ہے. وہ کہتے ہیں دیوار میں کیل کانٹے لگنے سے کہیں اگر ہولز ہیں ہم ان کو فل کرنے کے بعد اچھی طرح سے رگڑائی کریں گے. سلیم صدیقی آپ کے گھر کے اندر یا آفس میں پینٹ کریں گے, دام بہت مناسب دیں گے, یہ میری آپ کو گارنٹی ہے. سلیم صدیقی سے ویری سویٹ مین, ویری سویٹ ینگ مین. سلیم صدیقی کا نمبر 6472711974 271974. دیکھیے آج وینسڈے ہے, تھرسڈے اینڈ فرائیڈے, بلکہ ریچا شرما بھی جب آئی تھی تو وہ ہمارے نیاگرا فالز میں ٹیسٹ آف بامبے پہ گئی تھی, اور ٹیسٹ آف بامبے نے ان کو جو فوڈ سرو کی, میں کوئی ایگزیجوریٹ نہیں کرتی, کہنے لگی کہ میں نے چوکڑی مار کے کھانا کھایا اور بہت مزے سے کھانا کھایا. تو صاحب ٹیسٹ آف بامبے پہ آپ بھی ضرور جائیے گا, اور دال اور ساتھ میں لچھے دار پراٹھے تنور کے کھائیں. اچھا تنور کی روٹی اکثر میدے کی ہوتی ہے, نان جو لگتا ہے, یہ آپ کو آٹے کے لچھے دار پراٹھے بنا کے دیں گے. یس آٹے کے لچھے دار پراٹھے, یو کین امیجن ہاؤ مچ ماؤتھ واٹرنگ اٹ از. ٹیسٹ آف بامبے کا نمبر 9054 5946 5946 5946 5946 ہمارے ٹیسٹ آف بامبے کا نمبر ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے جائیے جائیے تو پلیز پروگرام کا ریفرنس ضرور دیجیے گا, آپ کا بہت شکریہ ہوگا. ہم آپ کی ملاقات آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں, انڈیا لے کے جانا چاہتے ہیں, اور انڈیا سے ہمارے ساتھ ایوری منڈے اور ایوری وینسڈے کو شویندر جی ہوا کرتے ہیں. او شویندر جی گڈ آفٹر نون, کداں پھر کی حال ہے؟
ہاں جی عرفا جی میں بالکل ٹھیک ہاں, نومر نو ہاں, تے سو ودیا حال چال نال تہاڈے کول حاضر ہاں, تے کام نہ کردا وی حال چال تہاڈا تے ساڈے سروتیاں دا وی ودیا ہوئے گا, تے اوندے ساری سلام ست سری اکال تے نمستے سارے متراں نو.
ست سری اکال, نمستے, گڈ آفٹر نون اینڈ گڈ مارننگ انڈیا. مگر شویندر جی اج انڈیا دیاں باقی خبراں, مگر نریندر مودی صاحب نو بڑا کریڈٹ جاندا ہے, انہوں نے اپنی ٹیم نو بڑا سراہا, بہت سراہا انہوں نے اپنی ٹیم کو, کہ آر ٹیم از دا بیسٹ ٹیم, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ کرکٹ از جسٹ بائی چانس. مگر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے, انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, یعنی ہمارے انڈیا کے بھائی بہنوں سے, جس سے یقیناً ان کے تن بدن کو آگ بھی لگی, انڈیا میں لوگوں کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟
دیکھو کرکٹ دا جی میں پوت اپنے دوواں ملک نے نا جڑے پاکستان چ ہووے چاہے انڈیا, انہاں نوں ہوندا وی دیکھو جی جے تا انڈیا یا پاکستان ہار گیا تا پتہ نہیں کڈی دنیا دی جنگ ہار گئے, دوویں ملک ہن, تے اسی طرح ہی ہن انڈیا نوں جڑا صدمہ لگیا وہ لگے ہی ہے, کیونکہ جڑا اودا کارن ہے گا کہ مینچسٹر دے وچ کھیڈے گئے سیمی فائنل وچ بھارت نے نیوزی لینڈ دے ہتھوں ہار کے فائنل دے وچ پرویش کرن دا موقع گوا لیا, دے نال ہی بھارت بھارتی ٹیم جہاں وشو کپ جنوب ورلڈ کپ آپ کہنے ہیں وہ جا سپنا چکنا چور ہو گیا. نیوزی لینڈ نے بھارتی ٹیم جا 18 دوڑا نال مات دے دیتی ہے, منگلوار نو میہ پین کر کے جی اپنا پتا ہی ہے کہ میچ وچلے روکنا پیا سی, بدھوار سے جا پیا, نیوزی لینڈ نے 239 دوڑا بنائی سی, بھارتی ٹیم اگے 240 دوڑا کا ٹیچا میتھیا سی, جبکہ بھارتی ٹیم 221 دوڑا بنا کے 99 اوور پورا ہو گیا, تو تیجی گیند اگلے اوور کی سی اتے ٹہ ٹھہری ہو گئی. سو انڈیا نو یہی ہے کہ ہن بھائی سا راہ ڈکیا گیا, سارے سپنے چکنا چور ہو گئے ورلڈ کپ دے, نہیں پتہ نہیں سپنے سنجوئی بیٹھے سی گے وہ سپنے جڑے ہے پورے نہیں ہو سکے, اس گل کا جڑا ماتم پورا ملک منا رہا جی, جہے خاص کر کرکٹ پریمی ہے وہ کافی اداس نظر آ رہے ہیں. اج کو میں ویسے دیکھا کہ جدو میں ایک ٹی وی اسٹوڈیو دے وچ ڈیبیٹ لی گیا سی, اوتھے بھی جڑے کرمچاری سی ٹی وی اسٹوڈیو دے, مطلب جڑے کچھ اینکر سی گے جا جڑے اوتھے دے جڑے ہے گیا نیوز روم تے کام کرن والے, انہاں دا بھی پورا دھیان جڑا ہے گا کرکٹ میچ وال سی گا. جدو میں وال کٹاؤن گیا تے اوتھے بھی جڑے وال کٹاؤن والے دی اوتھے بھی جڑا ٹی وی دے اوپر بھی میچ دا ہی ذکر سی گا, ایتھوں ہی پتہ لگدا کہ گلی محلے جڑا چرچا سی گی, ایک جویں ایں لگ رہا سی کہ ملک خود بھی کھیڈ رہا, صرف وہ کھڈاری نہیں کھیڈ رہے ملک خود بھی کھیڈ رہا, لیکن انہوں نے آساں نو بور نہیں پی سکیا جی.
ویری سیڈ, اور انڈیا کی ٹیم جو تھی وہ بالکل جناب بنا کسی شکست کے, مگر یہ شکست شروع ہوئی وہاں سے جہاں سے انگلینڈ سے ہار ہوئی, مگر وہی کہتے ہیں نا کہ اپنا پھر پیار کے ساتھ رکھتا ہے, کاش پاکستان اور انڈیا دونوں فائنلز میں ہوتے تو بات ہی کیا تھی, مگر
ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਫਾ ਜੀ ਐਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਰਫਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ
ਕੀ ਬਾਤ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ
ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਬੱਲੇ ਬੁੱਲੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਇਓ
ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ
ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਅਰਫਾ ਜੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ
ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ
ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਰਫਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਥੋੜੋ ਵਿੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਹਮ ਪੋਇਟਰੀ ਕੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਿਆ ਖਬਰੇਂ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਫਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਖੈਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਰਫਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿਣ ਇਹ ਵੀ ਓਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੇਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਰੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੱਖੇ ਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਲਵ, ਮਾਈ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੇਮ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਬੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋ, ਬਟ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਮੇ ਬੱਚੇ ਮਾਦਰ ਪਿਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਰਨਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਨਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਚੈੱਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਬੱਚਾ ਇਤਨਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕਹਿ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰਮਾਯਾਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਕਹਿ ਲੇ, ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਅਲਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਕਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਮੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਬ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਜੀਏਗਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਵਹਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਆਪ ਇਹ 26 ਸਾਲ ਮੇ ਮੈਨੇ ਯਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਈਵਨ ਯੇ ਚੇਂਜ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਬਣਨੇ ਲਗੇ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕਾ ਮਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਕੀ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਰਫਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ₹1000 ਹੋ ਗਈ ਫੀਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ₹70 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ 5000 10000 ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ₹70 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਆਪਕੋ ਯਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਨਾਬ ਖਾਬਰ ਨਈਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਆਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਸੇਮ ਵੇ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਔਰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, chemistry ki class they charge $85 per hour, and if you want to take him mathematics class that is $110 per hour, it depends upon you how many classes you can get. Yes, bachche like hain, magar there are times ki jab bachchon ko zarurat hoti hai, to ye is system ki bhi main baat kar rahi hu. Anyways, anything else what you would like to discuss?
ਅਲਫਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕਸ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਗ੍ਰਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕਸ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਮੈਂ ਗਈ ਵੀ ਤੀ, ਆਈ ਨੋ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਯੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਯਾ, ਮਗਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਨਕੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਛਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਰੇ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈਗੀ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਸੱਚ ਅ ਲੇਟ ਆਵਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਔਨ ਮੰਡੇ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰਫਾ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 3 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
थैंक यू वेरी मच जिविंदर जी, हमारे साथ थे। एक पोइम के साथ लेके चलती हूँ कि कभी नाराज़ मत होना, गिले चाहे बहुत करना, रुलाना और बहुत लड़ना, सुनो नाराज़ मत होना। कभी नाराज़ मत होना, गिले चाहे बहुत करना, रुलाना और बहुत लड़ना, सुनो सुनो नाराज मत होना। कभी ऐसा जो हो जाए कि तेरी याद से गाफिल, किसी लम्हे जो हो जाऊं बिना देखे तेरी सूरत, किसी शब्द में जो सो जाऊं तो सपनों में चले आना, मुझे एहसास दिला जाना, सुनो नाराज मत होना। कभी ऐसा जो हो जाए जिन्हें जिन्हें कहना जरूरी हो, वो मुझसे लफ्ज खो जाए, अना को बीच मत लाना, मेरी आवाज बन जाना, कभी नाराज मत होना। मगर ये लास्ट स्टैंजा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है साहब। कितनी भी किसी से मोहब्बत कर लें, ये जो अना और ये जो ईगो है ना, ये तो भटा गोल कर देती है। बहरहाल पोएट भी क्या है, कहते हैं कभी ऐसा जो हो जाए जिन्हें कहना ज़रूरी हो और वो मुझसे लफ्ज़ खो जाए, अना को बीच मत लाना, मेरी आवाज़ बन जाना, कभी नाराज मत होना।
इसको चेंज कर दें, उसमें लिख दें आप अस्सलाम वालेकुम के कभी थप्पड़ ना मारना।
यू मस्ट बी अरेस्टेड,
आई कुड बी अरेस्टेड,
यू मस्ट बी अरेस्टेड मैन,
आई कुड बी अरेस्टेड,
यू लिव इन कैनेडा एंड यू टॉक अबाउट थप्पड़,
आई नो
माय गॉड,
एंड इफ यू हैव विटनेसेस यू आर यू गॉट इट मेड,
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। साहब हम आपको लेके जाना चाहते हैं हलाल फूड फेस्टिवल 20 और 21 तारीख को इन मिसिसागा, कहाँ पे, एयरपोर्ट एंड डेरी के इंटरसेक्शन पे, डोंट मिस इट, प्लीज डोंट मिस इट। ये हलाल फूड फेस्टिवल नॉर्थ अमेरिका का बड़ा हलाल फूड फेस्टिवल है, जहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका से वेंडर्स तशरीफ ला रहे हैं। इंडोर आउटडोर फेस्टिवल है, लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेंड शेफ करेंगे, लाइव स्टेज परफॉर्मेंस, नशीद के प्रोग्राम होंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम फेस्टिवल में, वर्कशॉप्स होंगी, सेमिनार्स होंगे। नॉर्थ अमेरिका की पूरी हलाल इंडस्ट्री आ रही है, अ लार्ज एंड डाइवर्स शॉपिंग एरियाज हैं हलाल फूड फेस्टिवल में, सैम्पलिंग एरियाज हैं, आउटडोर स्ट्रीट फेस्टिवल, इंडोर स्ट्रीट फेस्टिवल, लार्ज इंडोर किड जोन है जहाँ इनफ्लेटेबल्स हैं, इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स हैं, करेक्टर मीट एंड ग्रीट, हाँ लाइव कॉन्टेस्ट, हाई अटेंडी एंगेजमेंट, बहुत सारे लोग आते हैं अमेरिका से, कैनेडा से, और यहाँ पे यूनिक केक डेकोरेशन कॉम्पिटिशन भी है। आप अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जनाब कुरैशी साहब का नंबर 6472865727। इट इज़ हैपनिंग फॉर लास्ट 7 years, दिस इज 7th कंसेक्यूटिव ईयर। और 13 तारीख दिस कमिंग सैटरडे पाकिस्तान के 8 डिज़ाइनर्स टोरंटो में आ रहे हैं, और ये डिज़ाइनर्स अपना स्टफ़ लेके आ रहे हैं जिसमें ज्वेलरी बड़ी खूबसूरत है। ये इसका वेन्यू जो है वो है हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलीवार्ड पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मिस मत कीजिएगा, इसकी कोई टिकट नहीं, नो टिकट व्हाटसोएवर। ज्वेलरी है, कपड़े हैं और डिज़ाइनर्स एग्जीबिशन है 6475724353 उनका नंबर है। चलिए साहब एक गीत आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, मैं आपके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल शेयर करूँगी, मगर देखते हैं आपको कितने इंस्ट्रूमेंटल्स का पता है। इंस्ट्रूमेंटल मैं पेश करती हूँ और आपने बताना है गीत कौन सा है। स्टूडियो का नंबर 416-6020-7786-1720-1778। ठीक है, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज कर देना, कभी नाराज हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारी आरजू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हीं को देखते रहना, तुम्हीं को सोचते रहना, सवालों में जवाबों में बहुत गहरे ख्यालों में मोहब्बत के हवालों में तुम्हारे नाम का आना, मुझे अच्छा सा लगता है। लो मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ, चलिए देखिए, वो मतलब जवानी ऐसी कमाल की चीज़ होती है, यानी वाकई हम बड़े भी हो जाते हैं मगर हमारी हरकतें बच्चों वाली रहती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक लड़की का नाम है, उसका नाम है फातिमा, पहन रही ज़रा, ठीक है, तो वो हम लव लाइक हेट कैसे निकाला करते होते थे। फर्ज करो एक लड़की का नाम है सरवा,
अच्छा
नहीं तुम्हारे पे नहीं,
खुश कर दिया आपने लड़की का नाम, अच्छा थैंक यू।
चलो एक का नाम है, लड़की का नाम है फातिमा, ठीक है, और फातिमा और एक लड़का है उसका नाम है कादिर, QADIR। अब हमने पता करना है कि कौन किससे लव करता है, कौन किससे हेट करता है, क्या जेन्युइन है कि नहीं। तो फातिमा में सेकंड ए है, ए को कादिर के ए से काट दिया, फातिमा चौथे नंबर पे आई है, आई को कादिर के आई से काट दिया, ठीक है, अब बना फातिमा का एफ बचा जो नहीं कट सका, टी नहीं कट सका, एम नहीं कट सका, ए नहीं, तो हुआ लव लाइक हेट। तो फातिमा जो है ना वो कादिर से करती है मोहब्बत, लव। अब कादिर देखो क्या करता है, उसका सिर्फ जो नहीं कटा क्यू डी आर, तो वो बनेगा लव लाइक हेट, तो कादिर जो है ना वो दो नंबर आदमी है, वो हेट करता है।
ये काम हम यहाँ पे शुरू करने लगे कुंडलियां निकालना।
चलिए सरवत एक गाना लगाते हैं, देखते हैं पहचानते हैं कौन कौन इसको पहचानता है। यू क्रॉस द सेम अल्फाबेट इन बोथ नेम्स, या दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू, ओके, सी दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, इफ इट्स फातिमा, okay, so whatever the alphabets are same in the both names, you have to cut those. So Fatima AA dono mein hai common, kaat diya, T aur D common nahi hai, T bhi reh jayega, D bhi reh jayega, Tima I hai, I aur Kadir mein bhi I hai, dono mein common kaat diya, to ab jo whatever is remainder, तो एफ टी एम ए इज रिमाइंडर इन गर्ल्स नेम एंड द मैंस नेम इज क्यू डी आर, सो फातिमा लव्स कादिर बट कादिर ही हेट्स फातिमा, ओ माई गॉड। चलिए साहब, अ मैन आस्क्ड एन आर्टिस्ट हाउ डू यू मेक सच ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर विद द स्टोन, he replied, beauty is already hidden there, I just remove extra stone, your happiness is hidden within yourself, just remove your worries. Oh my god, 6712, you are so beautiful person. kitni pyari baat kahi ki har cheez ke andar khoobsurti hoti hai, sirf ye ki worries ke part ko nikal do and the beauty jo hai wo unveil ho jayegi,
positive nazar.
thank you very kindly, I love you man, this is the reason I love you. चलिए एक गीत और जो पहचानेगा वो ठहरेगा आज का सिकंदर, और मेरे साथ तैयार रहिएगा इस गीत के बाद, आपने पहचानना इस गीत को, स्टूडियो का नंबर 416-6020-1778, और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे अमेरिका, अमेरिका से हमारे साथ होंगे जनाब अजीम मियां साहब, और अजीम मियां साहब हमें बताएंगे,
कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कॉलर्स को ले लें,
पहले गाना लगाए ना,
पहले तो पूछ तो
नहीं, पहले गाना लगाए, ये गाने को पहले पहचाने। ए मेरी अम्मी,
अब तो सबने गेस भी कर लिया।
नाबे आलम जी, कौन सा गाना है?
अस्सलाम वालेकुम भाजी।
जी वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम माजी भाई, सही से
जी जी।
ये मेरा ख्याल है ये वो है, मैंने चुन लिया।
आपका नाम
क्या चुन लिया? चेरी।
मेरा नाम शाहिद है।
शाहिद भाई, वो सरवत पूछ रही है मैंने क्या चुन लिया। चेरीज।
चेरीज चुने, एप्पल चुने, लेकिन ये तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना। अब आरफा भाजी से मेरा सवाल है
जी।
वो आरफा भाजी, आपने वो कुंडली निकालने का वो मैथमेटिक्स का तरीका जो बता दिया ना, तो वह अब हमारे जो नाम थे ना, तो हमें जब हम स्कूल में पढ़ते होते थे तो हमें सब नामों से बुला लिया करती थी लड़कियां ना।
अच्छा।
हमारे हमारे क्लास में एक लड़का महबूब पढ़ता था।
अच्छा।
उसे सारी लड़कियां महबूब भाई कहती थी। वो किससे लव करता था या किसी कोई और उससे लव क्यों नहीं करता था? बताए ना, मुझे जवाब देना। मतलब
अच्छा, पहले लड़के नहीं, तो हर
महबूब भाई
वो दो
महबूब था, सारी लड़कियों से महबूब भाई क्यों?
मगर नहीं नहीं, नाम तो निकलेगा ना महबूब से, तो अब आगे लड़की का नाम बताना होगा, मैं निकाल लेती हूँ।
नहीं ना, वो उसको
देखिए, मैंने माजिद जमाल का निकाला है। आपकी बीवी तो आपसे वैसे ही हेट करती है।
देखे देखे देखे, बात सुने, माजिद भाई तो वैसे ही जो है ना वो अप्रोचेबल है ना, उन्होंने अभी सवाल भी पूछा था, थप्पड़ ना मारना आपने, वो उनको वैसे ही चुप करा दिया। वो तो लमिया की गाय, आप तो जब जाए उनको हलाल करती रहती है ना वो तो।
अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, माजिद भाई का मैंने निकाला है, माजिद भाई और वहीदा। अब देखिए, वहीदा जो है, माजिद जमाल का पूरा नाम है अब्दुल माजिद जमाल, और वहीदा का नाम वहीदा ही है। तो वहीदा का ए माजिद के ए से कट गया, और एक और ए भी डी माजिद में डी आता है, डी डी से कट गया। अब आप निकालें अब्दुल, बी डी यू एल रह गया, लव लाइक हेट, लव लाइक हेट, लव लाइक हेट, लव। माजिद जमाल इश्क करते हैं अपनी बीवी से। और वहीदा के नाम के भी चार हरफ बाकी बचे, डब्ल्यू।
मेरा ख्याल है कि मेरी माजिद भाई से अकेले में बात हो चुकी है, वो बता। मैं क्या हरफा भाजी, तुम रहने दो।
इसका मतलब है, देखिए मैंने माजिद भाई और वहीदा का निकाल लिया, दोनों एक दूसरे की से मोहब्बत करते हैं बिल्कुल, और इस बात की मैं भी जाती तौर पे गवाह हूँ।
आज आप माजिद भाई के घर में इनवाइटेड तो नहीं रात के खाने?
आई लव यू शायद, आई लव यू मेरी जान, थैंक यू वेरी मच।
लेकिन बाजी, मेरी बात वहीं पे रह गई, वो महबूब का नाम जो महबूब,
वो मेरी जान, मेरे पुत्र, पहले मुझे महबूब के साथ किसी लड़की का नाम बताओ तो मैं बताऊंगा।
करते ही नहीं ना,
जितनी लड़कियां शगुफ्ता, तराना, जो आप नाम ले लेना,
शगुफ्ता, एस ए ए जी यू एफ टी ए। चलो अभी निकाल के बता।
सारी लड़कियां, वो जो हलीम मंगवाना होता था, बोलती नहीं महबूब भाई जरा हलीम ला दे, वो बेचारा मुंह लटका के चला जाता था।
हाय बेचारा,
नाम चेंज करना चाहिए।
हाय बेचारा, हाय
नाम का प्रॉब्लम आ गया ना, हमारी मैथमेटिक्स यहाँ पे फेल हो गई है।
अभी मैं निकाल देती हूँ।
नहीं, फिर भी निकाल देती
नहीं, शगुफ्ता से महबूब हेट करता था।
अच्छा,
हाँ बता दिया।
महबूब तो बेचारा अपने नाम से हेट करता था, वो कहता था नाम महबूब क्यों रख दिया।
थैंक यू चाहिए,
इसलिए हर एक को अपना नाम रखना चाहिए जान। कल भी हमारे पास एक शायर आए थे, उन्होंने अपना तखल्लुस जो रखा था वो जान रखा था, तो हर एक
NWSP में पैदा होना चाहिए थे, आसमान जान, जमीन जान,
बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, शायद मेरे बच्चे जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जस्ट टू कीप यू हैप्पी हेल्थी।
जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, पहला नशा मैंने तुम्हें चुन लिया।
आपका नाम?
मैं भाई साहब के करीब में रहता हूँ, चरणजीत नागपाल जी।
चरणजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। माजिद भाई आपके साथ रहते हैं, और इन्होंने मुझे बताया है कि माजिद भाई की कितनी बुरी आदतें हैं।
अच्छा?
नहीं, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे हैं।
देख लो,
आप क्यों पिटवा रहे हो, हमारे पड़ोस में हमें क्यों पिटवा रहे हो?
आई लव यू चरणजीत, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो मेरी जान, जीते रहो।
आई लव यू बोथ ऑफ यू,
आई लव यू, आई लव यू। बहुत शुक्रिया फॉर योर पार्टिसिपेशन। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे संग संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज कर देना, कभी नाराज हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर तुम्हारी आरजू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना, मुझे अच्छा सा लगता है, मुझे अच्छा सा लगता है तुम्ही को देखते रहना, तुम्ही को सोचते रहना, सवालों में जवाबों में बहुत गहरे ख्यालों में मोहब्बत के हवालों में तुम्हारे नाम का आना मुझे अच्छा सा लगता है। जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
मेरा ख्याल है।
हेलो जी
वालेकुम
अस्सलाम
जी। वो फिल्म का नाम था जो जीता वो सिकंदर।
हाँ जो जीता वही सिकंदर
जी। और जो महबूब को उन्होंने आपसे पूछा तो आप लोग गाने नहीं सुने पाकिस्तानी गाने तुम ही हो महबूब मेरे तो महबूब का मतलब आप समझ जाए आप।
मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। आपका नाम क्या
है? तो लड़कियों वो भाई मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी।
जी मैं भाई बहुत शुक्रिया माजिद भाई। वो एक हमारे बहुत अच्छे लिसनर थे अशरफ भाई। मियां साहब वो कहाँ चले गए?
मियां साहब मार्कम वाले।
हाँ
हाँ
वो कहाँ चले गए?
काफी दिनों से उन्होंने फोन नहीं किया।
देखिए आपको मैं बताती हूँ वही बात है ना कि आप लिसनर्स के साथ जो एक ताल्लुक होता है जब कोई नई कॉल करता तो वी मिस हिम। अब मियां साहब मियां अशरफ।
हाँ मियां अशरफ।
अब मियां अशरफ कहाँ है? मियां साहब कितने हो तुसी दस्या ही नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी जान कैसे हो पुत्री?
अल्हम्दुलिल्लाह।
ये हैमिल्टन की रिप्रेजेंटेशन।
महबूब बाबू की बात हो तो एक एक मरतबा मुझे याद है कि वो हमारे एक राइटर थे मुन्नू भाई।
हाँ मुन्नू भाई।
तो उनसे पूछा गया आपकी बेगम को आपको क्या पुकारती हैं?
तो मुन्नू भाई बुलाती हूँ।
मुन्नू बुलाती है भाई बुलाती है। खुश हो आबाद रहो।
आबाद रहो आबाद रहो। बहुत प्यारा बेटा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा एक और गीत की तरफ हम लेके चलते हैं।
ये गेस करेंगे तो गेस करना मुश्किल है।
तुम्हें शुक्र है तुम टीचर नहीं हो। अगर आप टीचर बन जाओ तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे।
घर में टीचर ही हूँ।
बहुत ही मुश्किल गाना है भाई साहब।
गजनी का था गजनी सॉन्ग। कौन तु कौन मुझे यूं प्यार करेगा। गजनी सॉन्ग। चले कोई बात नहीं आसान लगा दें।
अच्छा सा गाना लगाओ ना जो कि सबके जहन में हो। अल्लाह का शुक्र है चंदा भाई।
माजिद दीवार कैसे हैं
जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह।
और सभी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
आपका बहुत शुक्रिया चंदा भाई। आप अपना नाम बताइए।
नाम सर मेरा नाम भूल गई। मुझे गुरमीर सिंह कहते हैं।
गुरमीर भाई आज तो आपकी आवाज ही पतली हुई है। क्या खाया था आपने? आज तो बड़ी आज तो ये 20 साल के आदमी की आवाज है।
जवान हो गया हूँ ना।
लगता है कुछ हुआ जरूर है।
ये तो मेरी बीवी का कसूर है ना।
जिंदाबाद जनाब। आप बताइए गाना कौन सा?
गाना ये जो चल रहा है
जी
इसका तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने गाना फरमाइश की किया जो अगर लगा दें।
बताइए कौन सा?
वो मन्ना डे का गाना है बहुत शानदार। तू दीप बनेगा या तारा तू चांद बनेगा या सितारा।
दीप बनेगा या तारा चांद बनेगा या सितारा। बहुत शुक्रिया अभी लगा देते हैं। बहुत
थैंक यू।
सब कहते हैं कि जब कभी जब मैं नहीं हूँगा तुम्हें सब याद आएगा। वो मेरी बेकरां चाहत तुम्हारे नाम की आदत वो मेरे इश्क की शिद्दत वसाले हिजर की लज़त तुम्हारी हर अदा को शायरी का रंग दे देना खुद अपनी ख्वाहिशों का बेबसी का रंग दे देना तुम्हें सब याद आएगा तुम्हें सब याद आएगा। वो मेरी आँख का हम वफाओं का वो मौसम भी, जुनू खेजी का आलम भी, मेरी हर एक खुशी गम भी, मेरा वो मुस्कुराकर दर्द को दिल से लगा लेना, तुम्हारे ख्वाब भी आंखों के हर आंसू चुरा लेना, तुम्हें सब याद आएगा, तुम्हारी सोच में रहना, तुम्हारी बेरुखी सहना, भला भुला कर रंजिशें सारी, फकत अपना तुम्हें कहना, तुम्हारे नाम को तस्बीह की सूरत बना लेना, तुम्हारे जिक्र से दिल का हर एक गोशा सजा लेना। अभी तो मुस्कुरा कर तुम बातों को सुनती हो, मगर ये जान लो जाना, तुम्हें सब याद आएगा, तुम्हें सब याद आएगा कभी जो मैं नहीं हूंगा।
दो कॉलर हैं और कॉल्स।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप क्या पूछ रही हैं?
ये मैं पूछ रही हूँ गाना कौन सा है।
गाना मैं गा के सुनाऊंगा।
मुझे पता है तुम बहुत खुश हो।
मैं गा के सुनाऊंगा। कब आएगा मौका 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 मौका।
I love you बच्चा। ये जुनेद मेरा बहुत प्यारा बेटा, थैंक यू वेरी मच जुनेद जानू।
और कॉलर
है जी, डॉक्टर गजाला जैद का भी पैगाम सुन लीजिए। डॉक्टर गजाला जैद फैमिली डेंटिस्ट हैं, हमारी अपनी डेंटिस्ट हैं, स्कारब्रो में सीडर ब्रे डेंटल क्लिनिक के साथ। एंड आई गारंटी कि शी विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सर्विस, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक है। शी इज अ वंडरफुल पर्सन। हमारे एक बुखारी भाई बहुत प्यारे भाई हैं, कहने लगे कि आरफा बहन मैं सदा से अच्छी जॉब करता हूँ, मेरा डॉक्टर मेन स्ट्रीम का डॉक्टर था, इट्स अनबिलीवेबल, आई वेंट टू डॉक्टर गजाला एंड देन आई टुक माई वाइफ लेटर ऑन, द वे शी डील्स इज अनबिलीवेबल। मैं ऑलरेडी एक क्लिनिक में उम्रों से जाता था, मगर डॉक्टर गजाला जैद आप भी विजिट कीजिए। डॉक्टर गजाला जैद सीडर ब्रे क्लिनिक डेंटल क्लिनिक 416-945-1000। इंश्योरेंस है या इंश्योरेंस नहीं, हर दो सूरतों में डॉक्टर गजाला जैद 416-945-1000। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम सलाम आरफा भाई जी, क्या हाल चाल है?
अल्लाह का बहुत शुक्र है।
आप लोग सब ठीक ठाक है? माजिद भाई
अभी तक तो ठीक
है, बहन आपके साथ
अभी तक तो ठीक है,
अल्लाह आगे भी ठीक रखे आप लोगों को।
सही सही।
ये गाना जो है वो चलते चलते मूवी का है, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का,
बिल्कुल सही है।
प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो क्यों इतने गिले हो गए?
क्या बात है जी,
आपकी कुंडली निकाली।
हम नहीं बेवफा, तुम नहीं, तो ये क्या सिलसिले हो गए?
अच्छा मुझे ये बताओ, आप अपनी बेगम के लिए कितने गाने गाते हो? गाते हो तो सच्ची सच्ची बोलो।
बेगम के लिए गाता हूँ।
कौन सा गाना गाते हो?
अक्सर उनको वो गाना सुनाता हूँ।
कौन सा?
तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है।
अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा सुखी और खुश रखे, आमीन सुमामीन। मेरा एक सवाल है कि बहुत से लोग हकीकत में अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, जैसे अभी मैंने माजिद भाई और वहीदा की कुंडली निकाली, मगर वो इतने ड्रामा बाज होते हैं, तो आप अभी अकेले में बैठ के अपनी बीवी का गिला तो नहीं करते?
नहीं नहीं
नहीं करते। माजिद भाई आप भी कुछ सीखिए इनसे।
मैं सीख रहा हूँ इनको, मैं अपना उस्ताद बनाना चाह रहा हूँ।
गिले सिकवे होते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के होते हैं, फिर
अल्लाह आप दोनों को खुश रखे।
वो एक शख्स था ना, वो अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था, बहुत जोरों से मार रहा था। एक फौजी भाई उसके करीब से गुजर रहा था, तो उसने कहा भाई अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? तो शौहर ने गुस्से से कहा ये बहुत गुस्ताख हो गई है। फौजी मुस्कराया और बोला औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शौहर की आंखों में हैरत उतर आई और डंडा एक तरफ फेंक कर बोला औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि भाई ये तो दूसरी बीवी की बात कर रहा है, तो उसने डंडा उठाया और फौजी को कहा तुम अपना रास्ता पकड़ो, तुम जाओ जाओ तुम जाओ, और मियां के हाथ में डंडा दिया, कहने तुम अपना काम करते रहो, ऐसा ना हो कि दूसरी आ जाए।
समझदार थी।
बहुत शुक्रिया साहब,
تھینک یو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام اجے بھائی عرفا پا کی حال چال ہے؟ میاں اشرف بول رہے ہیں مرکم تو.
میاں اشرف آ گئے جی. میاں اشرف بڑی زندگی ہے صاحب.
ہم آج آپ کو یاد کر رہے تھے کہ میاں صاحب نے ایک عمر سے کال نہیں کیا, کہاں تھے آپ؟
مجھے کسی دوست نے بنایا بتایا, میں تو نہیں ریڈیو سن رہا ابھی.
کیوں نہیں سن رہے؟
میں ابھی گاڑی کے باہر ہوں, گاڑی کے اندر نہیں ہوں. کسی نے بتایا کہ ماجد بھائی اور آپ یاد کر رہے ہیں آپ کو. میں نے سوچا یار کال کر لیں آپ کو اور ماجد بھائی کو, شکریہ یاد کرنے کا. مارکم والے تو پھر یاد کرتے رہتے, آپ یاد کریں یا نہ کریں, یاد کر لیا.
جو یہ پیار کے رشتے ہیں, آواز کے جو رشتے ہیں, جب بھی کوئی آواز کا رشتہ کال نہیں کرتا تو آپ یقین کیجئے گا وہ مس تھم. اسی لیے میاں صاحب آج آپ کو یاد کیا.
جی باجی میں تہاڈا پروگرام جڑا نا سندا رہنا ہمیشہ جدوں میرے کول کی ٹائم ہوندا ہے.
جناب تہاڈا بہت شکریہ.
ویسے میں کال کٹ ہی کرنا, تہن پتا ہے کہ سائی والی یاداں بہت آدیا نا.
میں صدقے جاواں. بہت شکریہ میاں صاحب,
بہت شکریہ بابا. اللہ حافظ. السلام علیکم.
چلیے صاحب ایک اور گیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. پچ اپروز کی جانب سے یہ گیت ہے, پچ اپروز. ایک گیت کی طرف لے کے چلتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو امریکہ لے کے جائیں گے. ہمارے ساتھ سے امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عظیم میاں صاحب. پیزا پروز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ٹرن کی آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو پیزا پروز کے نام کو یاد رکھیے گا. 416-508-7863. دے ہیو ویری مینی لوکیشنز ہیئر اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ یور باپ. پتہ ہے کتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے, ادھر سمکو بن گیا ہے, ادھر کیلیڈونیا بن گیا ہے. تو اگر آپ نے اپنا پیزا پروز کی برانچ لینی ہے تو بالکل اسٹارٹ کر کے, یعنی ویری نامنل پرائز کے ساتھ, یو کین ہیو دا فرینچائز. 416-508-7863 ان کا نمبر ہے. ہمارے آج کے پروگرام کو ہیئر میکس نے بھی تعاون دیا ہے. اگر آپ ہیئرنگ ایڈ لینا چاہتے ہیں یا ممبلنگ, اور میں آپ کو کیا بتاؤں, عمر کے ساتھ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیئر ڈیوائس لگوا لی تو اب تو اتنی یونیک آ گئی ہیں, ویری اسمال کہ کسی دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا کہ آپ نے ہیئرنگ ڈیوائس لگائی ہوئی ہے. ہیئر میکس کے شراز کا نمبر نوٹ کر لیں. امی, ابا, چاچا, ماما, تایا, کسی کو بھی ہیئرنگ ڈیوائسیز کی ضرورت ہے. شراز ایک عرصے سے مین اسٹریم کے ساتھ کام کر رہے تھے. ناؤ دے اسٹارٹیڈ, ہی اسٹارٹیڈ ٹو لوکیشنز. تو آپ پوچھ لیجیے ان سے.
9 2 8 7 9 2 7 2 9 2 8 7 9 2 7 9 2 8 7 9 2 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 9 2 8 7 ہاں نیکسٹ ون جی. اور السلام علیکم.
چلے گئے
جی, ہماری لائن بھی کھلی ہوئی نہیں کھلی ہوئی ہے جی. ہلو السلام علیکم.
چلے گئے.
چلے گئے. چلے آپ نے کچھ کیا ضرور ہے, پڑھ کے پھونکا. اچھا
چلے گئے چلے گئے. اب ایک گیت کی طرف لے کے چلتی ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد عظیم میاں جب ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ایک بار پھر اپنی لائنز اوپن کریں گے. پولیٹیکلی اگر آپ پولیٹیکل کوئی کنسرنز ہیں, پاکستان کی صورتحال کے بارے میں کنسرن ہے تو عظیم میاں صاحب سے آپ سوال کیجیے گا. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان تشریف لا رہے ہیں 22 تاریخ کو. ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کنفرم ہے, مگر بہت ساری اور ملاقاتیں کنفرم نہ ہو پائیں کیونکہ 8 تاریخ تک امریکہ کے ڈفرینٹ دفاتر جو تھے وہ بند تھے. اس کی لیٹسٹ صورتحال ہم لیں گے جناب عظیم میاں صاحب سے, مگر ایک گیت کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. یہ گیت اورینٹل کاسٹیوم کی طرف سے بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت اگر آپ لباس دیکھنا چاہتی ہیں, بہت بڑی بوتیک ہے. فیس بک پہ ثروت ان کا کیا کنیکشن ہے, اورینٹل کاسٹیوم اگر آپ فیس بک پہ آئیں تو آپ چوڑیاں, جیولری, ساڑیاں, لہنگے, وہ جو آج کل کے اسپیشل کرتے آپ کو لے سکتے ہیں. گرمیوں کا اسٹاف ان کے پاس بہت سارا آیا ہوا ہے. اورینٹل کاسٹیوم 9055691515 اورینٹل کاسٹیوم 3180 ریج وے ڈرائیو.
फूल किसी याद सा महकता है तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं ये साज पेड़ है या प्यार की दुआ
To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.
किस्मत के लब चूमेंगे